ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமிஜி ஸ்ரீ தத்ரூபானந்த்ஜி மகாராஜ். தேங்க் யூ. ஓம் நம சிவாய.
கல் ஜோ மந்திர கே ஊபர் பாத் கர ரஹே தே வோ மந்திர கே காகஜ் சப்வா கே ஆஜ் ஆப்கோ தியே கயே ஹே. கிருபையா அப்படி காகஜ் மேக்கே ரெனா ஓர் சுனத்தே ரெனா. தோ தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திர மந்திர நம்பர் ஏக.
விஸ்வம் தர்பண த்ரஷ்யமான நகரி துல்யம் நிஜாந்தர் பஷ்யன்னாத்மனி மாயா பஹிரிவோத் பூதம் யதா நித்ரயா யஷாக்ஷாத் குருதே ப்ரபோத சமயே
ஸ்வாத்மான மே வாத்வயம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரு மூர்த்தயே நமஏகம்.
விஸ்வம் தர்பண த்ரஷ்யமான நகரி, இஸ்கே ஊபர் ஹம் கல் விசார் விமர்ஷ் கர் ரஹே தே. அந்த மே ஹம் சமஜ்னே கா எக் பிரயாஸ் கர் ரஹே தே கி ஜோ ஜகத் ஜோ விஸ்வ ஔர் விஸ்வ கா அர்த் கல் மே ஆப்கோ சம்ஜா சுகா ஹூம். உர்த்வ லோக் சாத் ஹே, அதர் லோக் சாத் ஹே, சௌதோ லோகோ கோ மில்கர், தோடா நீச்சே சௌத லோக கோ மில்கர் ஜோ எக் ரச்சனா கி கை ஹே, ஜிஸ்கா எக் ரச்சயிதா ஹே, ஔர் வோ பூரி ரச்சனா கோ விஸ்வ கஹா ஜாதா ஹே. சோட்டி பாத் மே கஹே, ஜோ சீஜ் திகாய் தேதி ஹே ஔர் ஜோ சீஜ் ஜானி ஜாதி ஹே, தாத்பரிய ஹே ஜோ த்ரஷ்ய ஹே ஔர் ஜோ க்னேய ஹே, யே சபி கா சமாவேஷ் விஸ்வ சப்த கே பீத்தர ஹோதா ஹே. எனிதிங் விச் கேன் பிகம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் பர்செப்ஷன் அண்ட் எனிதிங் விச் இஸ் நோன் டு ஹியூமன் இண்டிவிஜுவல், நோன் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் சீன் தோனோ கோ மிலாயங்கே தோ உஸ்கோ விஸ்வ கஹா ஜாதா ஹே. ஔர் ஐசே விஸ்வ கே பாரே மே பாத் ஹே, விஸ்வம் தர்பண த்ரஷ்யமான நகரி துல்யம். ஔர் அந்த மே மஹத்வ கா சப்த ஹே ஜிஸ்கே ஊபர் ஹம் சர்ச்சா அதுரி சோட்கர் கல் யஹாம் சே கயே, வோ ஹே நிஜாந்தர்கதம், நிஜ அந்தர்கதம். ஜோ ஜகத் ஹமே பஹார் திகாய் தேதா ஹே, அசலியத் மே வாஸ்தவிக்தா மே வோ பஹார் தோ ஹே ஹி நஹீ, ஹே தோ பீத்தர், மகர் ஹமே பஹார் திகாய் தேதா ஹே. ஜேசே தர்பண கே பீத்தர் நகரி ஹே மர் பஹார் திகாய் தேதி ஹே, யா பஹார் திகாய் தேதி ஹே வஹி தர்பண கே பீத்தர் பி ஹே. விஸ்வம் தர்பண த்ரஷ்யமான நகரி துல்யம், த்ரஷ்ய ஹே பஹார் ஹே ஔர் வோ ஜகத் ஹே மர் பஹார் திக்னே வாலா ஜகத் அசல் மே பீத்தர் ஹே. தோ யஹாம் பர் தர்பண கே பீத்தர் ஜோ திக்தா ஹே உஸ்கோ பிரதிபிம்ப கேதே ஹே, और जो बाहर है उसका नाम बिंब है। जैसे कि मैं अपना मुखड़ा दर्पण में देखता हूं तो दर्पण में जो दिखता है वो तो प्रतिबिंब है, मगर प्रतिबिंब किसका है? जो बिंब है उसका है। बिंब मतलब मैं, और मेरा प्रतिबिंब दर्पण स्थित है तो वो मेरा प्रतिबिंब है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा साहब, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्लीज माय डियर सर। मैं आपको ये पूछता हूं, एक तो प्रतिबिंब है और एक बिंब है, दो है कि नहीं? अरे या तो हां कहो या तो ना कहो, दो है कि एक है? एक ही है तो एक कैसे है? मुझे तो दो दिखाई देते, एक प्रतिबिंब और एक बिंब, और बिंब होता है उसका प्रतिबिंब, और जिसका प्रतिबिंब उसका बिंब होता है, दो तो है, कैसे एक कहते हो? हैं? बिंब ठीक है, बिंब के अलावा प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, ये तो सीधी सबको पता है कि आईने के सामने से गाय तुम तो। बिंब और प्रतिबिंब है दो, मगर दोनों की सत्ता अलग अलग नहीं है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ऐसे समझो। प्रतिबिंब है उसकी सत्ता, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब भाव, प्रतिबिंब की सत्ता बिना बिंब के हो नहीं सकती है, तो प्रतिबिंब को सत्ता कौन देता है? प्रतिबिंब को सत्ता देता है बिंब, बिंब नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है। ऐसी बात करके समझाना क्या है? अरे भाई, एक होता है ब्रह्मांड और एक होता है ब्रह्म, मगर ब्रह्मांड की सत्ता बिना ब्रह्म के नहीं हो सकती है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, आपके जो स्पीकर है इसके डायरेक्शन चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। पूरा ब्रह्मांड है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब तो है, और क्या है? ब्रह्म और ब्रह्मांड दो सत्ता नहीं है। मरी कैसे समझा जा सकता है कि दो सत्ता नहीं है? ये धीरे धीरे समझने का हम प्रयास करेंगे। यहां पर शब्द है निजांतरगतम, शब्द थोड़ा लगे, निजांतरगतम, निज जो निजी है, आत्मा है, वो निजात्मा, निजांतरगतम मतलब जो निजात्मा है उससे स्वतंत्र विश्व की सत्ता नहीं है। जैसे बिंब से प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब ये चीज मैं समझाऊंगा और शब्द को थोड़ा बदली करूंगा कि ब्रह्म से ब्रह्मांड की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आपको समझना ये है। मगर अब मैं आपको अनेक अनेक दृष्टांत, तर्क, श्रुति, युक्ति, अनुभूति का प्रयोग करके समझाऊंगा कैसे ये चीज ठीक बैठती है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे जो विश्व की बात की गई है वो विश्व हमारे भीतर है। प्रत्येक दिन का नित्य हमारा अनुभव यह है कि जगत बाहर है, असलियत यह है कि जगत अंदर है। विश्व है तो अंदर, और अनुभव में पर्वत हैं, मकान हैं, वृक्ष हैं, ये हमको हमारे बाहर दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र हैं, ये बहुत दूर घूमते हुए हमारे बाहर दिखाई देते हैं। दौड़ती नदियां या सरिता हैं, और सागर की गर्जना हमको हमारे बाहर सुनाई देती है। और जितने जितने जगत में पदार्थ हैं, पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश हमको हमारे बाहर अनुभव में आता है। रोज रोज उदित होने वाले सितारे और अस्त होने वाले नक्षत्र, या अपनी पूंछ दिखाता हुआ दौड़ता धूमकेतु है, ये हमें हमारे बाहर दिखाई देता है। इतनी सारी चीज हमको अगर हमारे बाहर दिखाई देती है तो हम कैसे माने कि पूरा विश्व हमारे भीतर है। विश्व का अस्तित्व निजांतर्गतम है, अंदर अनुभव में वो बाहर दिखाई देता है। यह अनुभव सिद्ध, अनुभव सिद्ध जो बात है उससे उल्टी बात शंकराचार्य जी हमें समझाना चाहते हैं। ये गगन के जैसा नगन सत्य है, मगर ये समझने के लिए, क्या समझने के लिए, कि विश्व हमारे भीतर है और बाहर दिखाई देता है, ये तत्व समझने के लिए और ये तत्व समझाने के लिए अग्नि का पान करना जितना कठिन है, ये कार्य कठिन है। कितना कठिन है? बिना गगन के आकाश में उड़ना जैसा कठिन है, इतना कठिन है। देह के बिना जन्म लेना जितना कठिन है, इतना ये कार्य जोड़ने में आज जो कार्य उठाता हूं वो इतना कठिन है। कि विश्व है मेरे भीतर और मुझे बाहर दिखाई देता है, समझना ये है। मगर अनुभव अलग है हमारा कि सब कुछ तो बाहर दिखाई देता है, हम माने कैसे कि ये संबंध है। ऐसा है इसलिए तो ज्ञान के बारे में कहा गया, सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तर कवयो वदन्ति। ये ज्ञान मार्ग के ऊपर चलना न, छुरे की धार जैसा है, इसलिए ज्यादा लोग इसमें नहीं आते और हम चाहते भी नहीं कि ज्यादा लोग आए। कोई इन्हें गिने कोई हम बात करना चाहते हैं, सबका अधिकारी नहीं होता इस एक बात तो इसमें, ये बात सबके पल्ले भी पड़ने वाली नहीं है। तो ज्यादा भीड़ भाड़ दूसरी जगह में होती है, ज्ञान के पंथ में नहीं होती, वरना ज्ञान के बारे में ये बात ना कही होती कि सूरज से धारा निहिता दुरत्या, सूर्य की धार पर चलना जितना कठिन इतना ये कार्य कठिन है। क्या कठिन है? तो ब्रह्म से ब्रह्मांड की सत्ता अलग नहीं है, एक है, ये समझना। और जैसे बिंब से प्रतिबिंब की, अब दृष्टांत है, बिंब से प्रतिबिंब की सत्ता अलग नहीं है, यानी दो सत्ता नहीं, दो अस्तित्व नहीं, दो एग्जिस्टेंस नहीं, दो भाव नहीं, भाव तो एक ही है मगर हमको अलग अलग दिखाई देते हैं। ये मैंने अनुक्रम कर दिया आपके लिए समझाने के लिए। अब इसी की यही बात को बार बार दोहरा दोहरा के हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। निजांतर्गतम, प्रतिबिंब को देख के तो हम निर्णय लेते हैं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं, मैं कदरूप वाला हूं। अच्छा, तो जो दर्पण स्थित प्रतिबिंब है, देखिए दर्पण स्थित जो प्रतिबिंब है वो तो मेरे बाहर है, और जो मेरे बाहर है उसको देखकर मैं अपने बारे में जानकारी उपस्थित करता हूं, इकट्ठी करता हूं और औरों को बताता भी हूं। देखिए साहब, जब शंकराचार्य ने कह दिया कि ये सब भीतर है, तो शंकराचार्य को अर्थ ये अभिप्रेत है, मिरर में देखा और मैंने कहा मैं काला हूं गोरा हूं। अच्छा, मैं काला हूं गोरा हूं मोटा हूं दुबला हूं पतला हूं हैंडसम हूं ब्यूटीफुल हूं, ये ज्ञान है ये मिरर के भीतर होता है, दर्पण के भीतर होता है या मेरे भीतर होता है, ये ज्ञान कहां होता है? तो ज्ञान अगर मेरे भीतर होता है तो वो चीज मेरे भीतर है। सामने क्या तो पर्वत है, उसके ऊपर बर्फ जमा है, मर पर्वत है उसके ऊपर बर्फ जम गई है, वो ज्ञान तो अंदर होता है ने? नहीं समझ, ज्ञान बाहर होता है। अगर ज्ञान बाहर होता है तो पर्वत है ये ज्ञान ना होता, और उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है इसका ख्याल ना होता हमको, हमको पता है। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये निजांतर्गतम, जिस चीज का ज्ञान हमारे भीतर होता है वो चीज भीतर है और हमें बाहर दिखाई देती। समझिए कैसे हो सकता है ये सब, हो सकता है। रात को जब नींद में सो जाते हैं और स्वप्न आता है तो स्वप्न सृष्टि कहां उत्पन्न होकर खड़ी होती है, मन के भीतर, और मन कहां है, मेरे भीतर। और जो स्वप्न सृष्टि का रचयिता मन है, वो मन क्या है, अंतकरण का एक भाग है, भाग है, अंतकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, पार्ट एंड पार्सल ऑफ अंतकरण, देयर इज माइंड। एंड माइंड क्या है, ये सृष्टि का रचयिता है। कौन सी सृष्टि, स्वप्न सृष्टि। तो जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था, आज दोबारा दोहराई देता हूं, रेलवे ट्रेन में जाते हैं, जबकि आ गई, हम सो गए और रेलवे ट्रेन के अंदर स्वप्न में है, और स्वप्न के अंदर हम जंगल में हैं, और जंगल में सामने से हाथी भागता हुआ आता है और हम पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मैं कहता हूं चालू ट्रेन के अंदर इतना छोटा दरवाजा है, आपको भी घुसने में मुश्किल होती है, कभी सामान लेके बिस्तर लेके, हाथी कैसे वो दरवाजे से घुसेगा, और चालू ट्रेन में हाथी आ जाएगा। तो जो स्वप्न में, ट्रेन में, स्वप्न के जंगल में हाथी दिखा, वो हाथी है कहां, मन में है या बाहर है। हाथी कहां है, हाथी का अनुभव कहां है, मन में है। मगर हाथी दिखाई कहां देता है, मन के बाहर जंगल। ये तो ठीक है साहब, ट्रेन की बात तो अभी भी आप समझ सकते हो कि स्वामी जी सिग्नल नहीं है, गाड़ी खड़ी हो गई है और जंगल का हाथी ट्रेन में घुस गया, मैं मानता हूं। मगर हवाई जहाज में सपना आया है और उसमें जंगल और हाथी आया, तो हाथी को पंख तो है नहीं, उड़ के कहां घुसेगा, और एयरोस्टेस थोड़ी आने देगी हाथी को बिना टिकट के, वीसा के अंदर नहीं आने देगी। अब समझिए, जैसे स्वप्न में, इसलिए बहुत अच्छे से मंत्र के अंदर अच्छी अच्छी बात बताई गई है, देखा हमने के यथा निद्रया पश्यन्नात्मनि माया, माया शब्द बाद में देखेंगे, बहिरिवो उद्भूतम यथा निद्रया, निद्रा मतलब स्वप्न। स्वप्न के अंदर जो चीज हमारे भीतर है, भीतर मगर पूरी सृष्टि की सृष्टि हमें बाहर दिखाई देती है। दर्पण स्थित प्रतिबिंब, दर्पण स्थित जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब अगर शरीर का, देह का है, तो उसका ज्ञान, मैं काला हूं, गोरा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ये ज्ञान आत्मा के भीतर, हमारे भीतर निजांतरगतम, निजात्मा के अंदर होता है, फिर भी वो चीज हमको बाहर दिखाई देती है। निजात्मा कहो या ब्रह्म कहो, मगर यहां पर वही आत्मा जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्म के लिए कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। और पिंड और ब्रह्मांड दोनों जिसके भीतर है, क्योंकि दोनों का वो अधिष्ठान है। ऐसी काफी बातें आप तो सुग्न सोता सुन चुके हो, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। जितना जितना जन्मा हुआ है कुछ भी, वो जन्मी हुई चीज माया का सर्जन, इट इज क्रिएशन ऑफ माया, और माया ईश्वर की शक्ति है, और ईश्वर उसका पति है। ईश्वर आश्रित माया। अब देखिए, जैसे स्वप्न में सब कुछ भीतर होते हुए भी स्वप्न की सृष्टि बाहर दिखाई देती है मन के द्वारा, ऐसे ही माया के द्वारा जो जो चीज उत्पन्न की गई है वो है भीतर, मगर बाहर दिखाई देती है। समझ, माया भीतर कैसे, अरे माया का जो कारण है वो तो भीतर है। 18वां अध्याय गीता का तो हमने सुना, सोचा, कल बात भी की, ईश्वर कहां है? हृदय के भीतर। 18वें अध्याय में कृष्ण परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि हे अर्जुन, ये ईश्वर है, तेरे भीतर है। श्लोक में आया कि नहीं, याद है कि नहीं, बताइए तो। ईश्वर सर्वभूतानाम रुद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अब इतनी बात पकड़ में आती है, ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर तो भीतर है। तो ईश्वर और उसकी माया शक्ति है, अगर ईश्वर अंदर है तो माया बाहर थोड़ी होगी। दोनों अभिन्न हैं, कहे जाते हैं दो मगर है एक। कैसे? सूर्य और उसका प्रकाश कितने हैं? दो। एक सूर्य का प्रकाश और दूसरा सूर्य, दो है नहीं। प्रकाश से सूर्य अलग नहीं और सूर्य से प्रकाश अलग नहीं। अग्नि की उष्णता, तो उष्णता और अग्नि क्या दो है? नहीं। सोना और कंगन दो है? नहीं। मगर बोले जाते हैं दो मगर है एक। ऐसे ही ईश्वर और माया बोले जाते हैं दो मगर है एक। अगर ईश्वर आपके भीतर है, समझना साहब, अभी ईश्वर आपके भीतर है तो माया कहां? भीतर है। और सर्जन किसका है? माया का। तो ये सूर्य सृष्टि विश्व माया का सर्जन है और माया का कारण भीतर है, तो कार्य भी भीतर ही होना चाहिए। कंगन हो या गले का हार हो या एयरिंग हो या वीटी हो, अंगूठी हो, जो कुछ भी है, सब गहने का है सुवर्ण के भीतर, क्योंकि वो कारण है और ये कार्य है। ऐसे अगर माया मया अध्यक्षेण सूयते प्रकृति सचराचरम, भगवान ने कहा गीता में, ये सृष्टि को मैं सर्जता हूं मगर मैं खुद नहीं, स्वयं अपना हाथ से नहीं, माया के द्वारा सर्जन करता हूं। प्रकृति सूयते सचराचरम, चर और अचर जो कुछ जगत में विश्व में वो माया है। देखो अब मेरी बात पकड़ में थोड़ी थोड़ी आई है। ईश्वर अगर मेरे भीतर है तो माया मेरे भीतर है, एंड माया इज मटीरियल कॉज फॉर एंटायर क्रिएशन। तो जितने जितने नाम है, जितने जितने आकार हैं जगत में, जितने जितने आकार हैं वो दृश्य हैं, जितने जितने नाम हैं वो ज्ञेय हैं। तो मैंने पहले कह दिया कि जो दृश्य है और ज्ञेय है ये मिलकर विश्व बनता है। तो दिखाई देने वाला और जाना जाता है वो ऐसा जो कुछ भी है वो विश्व मेरे है, तो भीतर मगर बाहर दिखाई देता है। स्वामी जी हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप उपनिषद के और ये वेदों के मंत्र बोल बोल के हमको समझा जाएंगे, हम नहीं जानते संस्कृत इसलिए चुपचाप बैठे रहते हैं, मगर हम पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक मेथड से हमको समझाना चाहिए, समझाते हैं। Unless and until, if I can defeat your intellect, I know, then and then only you can accept me. Otherwise not. तो मैं समझाता हूं। विज्ञान कहता है प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण जिसको कहते हैं, परसेप्शन ऑफ फॉर्म, परसेप्शन ऑफ कलर, परसेप्शन ऑफ डेप्थ। परसेप्शन माने प्रत्यक्षीकरण, आकार का प्रत्यक्षीकरण, रंग का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन ऑफ फॉर्म, परसेप्शन ऑफ टेस्ट, समझना, परसेप्शन ऑफ टच, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जिसको हम कहते हैं, ये सबका अनुभव हमें होता है कि होता है। तो ये विज्ञान की बात है, मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी, कि परसेप्शन होता कैसे है, फिर वो परसेप्शन फॉर्म का हो, डेप्थ का हो, कलर का हो, साउंड का, स्मेल का, टेस्ट का और टच का, प्रत्यक्षीकरण जिसे कहते हैं। तो विज्ञान का सिद्धांत ऐसा है जिसका परसेप्शन, जिसका प्रत्यक्षीकरण होता है, वो चीज तो बाहर होती है मगर उसका ज्ञान भीतर होता है। सिंपल एग्जाम्पल, यहां से मैं देखता हूं ये फोटोग्राफ है और उसके पीछे चादर लगी है, मगर ये चादर का रंग कैसा नारंगी जैसा दिखता है ना, है? अच्छा मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं विज्ञान की बात करता हूं शास्त्रों को छोड़िए। तो प्रकाश के जो किरण है, ये ट्यूबलाइट का प्रकाश आता है यहां पर, उसका किरण है ये कपड़े के ऊपर पड़ता है, एक सरफेस के ऊपर। ईच एंड एवरी सरफेस हैज ए कैपेसिटी टू रिटर्न एंड रिबाउंड एन अमाउंट ऑफ लाइट। जो लाइट उसके ऊपर पड़ती है मगर सरफेस, और वो सरफेस जितनी अच्छी होगी, साफ होगी मिरर के जैसी, तो इतनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उस सरफेस को। यानी कि ये सपाटी है, इसके ऊपर प्रकाश के किरण जाते हैं तो वो सपाटी में ताकत है प्रकाश के किरण को रिफ्लेक्ट करती है, और प्रकाश के किरण रिफ्लेक्ट होकर आते हैं हमारी रेटिना के ऊपर आते हैं। हमारी रेटिना के ऊपर जब आते हैं तो रेटिना के पीछे एक ऑप्टिक नर्व होती है, और वो ऑप्टिक नर्व प्रकाश के किरण रेटिना के ऊपर आए तो वो मैसेज को, वो संदेश लेकर ऑप्टिक नर्व सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब मस्तिष्क के छाल में जाती है, और मस्तिष्क छाल के अंदर एक केंद्र है विजुअल सेंटर जिसको कहते हैं, कि जहां पर ये ज्ञान होता है कि ये कपड़ा सफेद है, ये लाल है, ये पीला है, मगर कैसे है? तो जो रेटिना है इसके अंदर कोष है, सली कोष, शंकु कोष, रॉड्स एंड कोन्स जिसको कहते हैं, इसके अंदर ये ताकत है। दे कैन परसीव कलर, दे कैन परसीव डेप्थ। तो मैं ये समझाना चाहता हूं, विज्ञान जब ये कहता है तो हम मानते हैं, पहले तो कुछ है नहीं, कपड़ा है, कुछ है, ये सेंसेशन है। सेंसेशन प्लस मीनिंगफुल सजेशन इक्वल टू परसेप्शन। संवेदन और भाव भराव सूचन दोनों को मिलकर होता है प्रत्यक्षीकरण। तो जब वो सपाटी के ऊपर प्रकाश की किरण जाते हैं, वापस आए ऑप्टिक मैसेज देके सेरेब्रल क्वार्टर्स मस्तिष्क छाल में गई, और वहां पर एक विजुअल सेंटर है, और वो सेंटर में पता लगता है कि ये नारंगी रंग का कपड़ा है। तो कलर का ज्ञान, रंग का ज्ञान कहां पर होता है? भीतर होता है। तो ये शंकराचार्य जी कहते हैं, जिसका ज्ञान भीतर होता है वो पहले भीतर होता है, फिर बाहर दिखाई देते। कैसे? शरीर बाहर है, बिंब होकर खड़ा है, और वो शरीर जो बाहर बिंब होकर खड़ा है उसका ही प्रतिबिंब मिरर में दिख सकता है। ऐसे जो भीतर होता है बिंब के रूप में, उसका ही प्रतिबिंब, और पूरा जगत है, विश्व है, इट इज नथिंग बट इल्यूजन। मात्र प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के अलावा जगत कुछ नहीं, और प्रतिबिंब कभी सत्य नहीं हो सकता है। हम उसमें आसक्त हैं, उसके पीछे भागते हैं, प्रतिबिंब के पीछे। बहुत बड़ी बात समझाने के लायक है, तो यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, कि जैसे प्रत्यक्षीकरण है उसका अनुभव भीतर होता है, फिर भी जिसका प्रत्यक्षीकरण होता है वो चीज हमें बाहर दिखाई देती है। बाहर दृश्य है वो दर्पणगत भ्रांति है, और पूरा जगत जो बाहर दिखाई देता है वो दर्पणग्रत भ्रांति है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। जैसे कि मैंने कल जिक्र किया था वार्तिककार का, मानसोल्लास का, श्रृंगेरी का शंकराचार्य परंपरा में हो गए, उन्होंने ये स्तोत्र को वार्तिक लिखा, उसने एक प्रश्न खड़ा किया है, अंतर अस्मिन् निमे लोकाहा अंतर विश्वमिदम् जगत बहिर्वत मायाभाति दर्पणे स्वशरीरवत। जितने जितने लोग हैं कहते हैं, ये सब है तो आत्मा के भीतर, फिर भी लोगों से बना हुआ विश्व है ये हमें बाहर दिखाई देता है। तो किसके द्वारा? मात्र माया के द्वारा ऐसा होता है। जैसे मन के द्वारा रची गई स्वप्न सृष्टि भीतर होते हुए बाहर दिखाई देती है, ऐसे ही माया के द्वारा जन्मा हुआ विश्व है हमारे भीतर होते हुए भी हमें बाहर दिखाई देता अब ये समझ के धीरे धीरे हम लोग आगे जाते हैं। निजांतरगतम, पहले आपको कार्य कारण का सिद्धांत समझना होगा कि जिसको हम कार्य कहते हैं वो कार्य कारण से अलग नहीं है, कारण से भिन्न है नहीं, गहने सोने से भिन्न नहीं है, जितने वस्त्र हैं सूती वस्त्र वो रुई से भिन्न नहीं है, घड़ा हो दीपक हो ईंट हो ये जितनी मिट्टी की बनी हुई चीजें हैं ये है कहां, मिट्टी के भीतर है, तभी तो मिट्टी से बाहर आती है। तो घड़ा ईंट दीपक ये कार्य कहे जाते हैं, गहने कार्य हैं और सोना कारण है। कारण कार्य के अंदर अनुस्यूत होता है,